अगली फरिश्तों की खूबी नोट कीजिएगा, और वो क्या है कि फरिश्ते शर्मो हया रखते हैं, यानी शर्मो हया से मुत्तसिफ हैं, और अल्लाह करे कि हमारे अंदर भी शर्मो हया आ जाए। हर बात जो इस वक्त फरिश्तों के नाम से सुन रहे हैं ना, अपने ऊपर फिट करें। वो कहते हैं ना कि शेर गलत ही होना मेरा, इतना लिखिएगा कि बेहतर है फरिश्तों से इंसान होना,
फरिश्तों से बेहतर है इंसान
फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर
होना।
लगती है इसमें मेहनत से ज्यादा। ये जो हमारे कल्चर में है ना, फलां तो फरिश्ता, ना ना ना, इंसान होना ज्यादा मुश्किल है। तो फरिश्ते शर्म और हया करते हैं। इस पे एक बड़ी प्यारी रिवायत है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहती हैं कि अल्लाह के नबी मेरे घर में आराम फरमा रहे थे कि आपकी रानों या पिंडलियों से ना कपड़ा हट गया, तहवन जैसे घुल जाता है, कभी हल्का हो गया। तो इतने में अबू बकर सिद्दीक आए, इजाजत मांगी, आपने उनको भी इजाजत दे दी, ऐसे ही लेटे रहे। फिर हजरत उमर भी आए, उन्होंने भी इजाजत मांगी, आपने उनको कुछ ना कहा। लेकिन जब हजरत उस्मान आए, इजाजत मांगी, तो आप बिल्कुल उठे और अपने कपड़े दुरुस्त किए। ये हजरत आयशा कहती हैं बाद में जब सब चले गए कि क्या बात है, अबू बकर और उमर आए तो आप बैठे रहे, यानी आपने कुछ नहीं कहा, तो उस्मान उनके आने पे आप इस तरह क्यों हुए? तो जवाब क्या था, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। अल्लाह अकबर, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं। जैसे ही मुस्लिम की रिवायत है 2401 नंबर की, तो क्या पता चला कि हजरत उस्मान की हया को पेश करते हुए फरिश्तों की बात की। अब जरा सा मैं बात कर लूं, मुझे इजाजत है? आज हम मुसलमान अपने आप को देखें, हया शर्म, हम कहते हैं शायद ये सिर्फ औरतों का काम है, नहीं, मर्द की भी हया उतनी जरूरी है जितनी औरतों की। हमारी बेटियों के कपड़े, बहुओं की शादियां, हमारी दुल्हन, और सिर्फ इस्लाह की खातर। वो कहते हैं ममा उरीदु इल्ला इस्लाहन। कभी आज तक आप सब अपनी उम्रें देखें, 25, 30, 35, 40 साल के तो आप होंगे ना, कभी आपने आज से 5 साल पीछे, मैंने तो 5 साल पहले नहीं था सुना हुआ, मेरा हाल 2-3 साल पहले ही सुना है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मैंने कभी सुना था कि एक लड़की को एक लड़का तैयार करता है शादी में, दुल्हन को लड़के तैयार करते हैं। 2-3 साल है, पता नहीं वक्त गुजरते पता नहीं चलता, नाम भी नहीं लूंगी, एक किरदार पता चला कि वो एक शहर में पाकिस्तान में रहता है, तो लोग अब उससे दुल्हन बनवाते हैं। पहले कभी होता था एक्ट्रेसेस और जो ड्रामास में आते हैं उनकी बनता है, तो उस लड़के की शोहरत है कि वो पंजाब तक आता है, हालांकि वो सिंध में कहीं रहता है। मुझे इतनी हैरत हुई, इतनी हैरत हुई, इज इट पॉसिबल? और अब उसकी तो पता नहीं कितनी ब्रांचें बन गई, और लाखों में एक एक दुल्हन का खर्चा। अभी चंद दिन पहले मुझे एक, जहर एक लोग खुद ही फर्स्ट हैंड अपनी बात सुनाते हैं, तो और वो कहते हैं कि लोगों को बताएं कि उनकी फैमिली में किसी की शादी थी, तो लड़के ने तैयार किया। आप इमेजिन करिए, आप सब भी शादियां जिनकी हुई हैं, कितना क्लोज होता है तैयार करने और कराने वाला। कभी पार्लर में गए हो, कभी फेशियल कराया हो, कभी जो भी चेहरे की मेंटेनेंस है, कितना कुर्ब हो जाता है। और एक लड़का, हाथ नहीं कांप जाते, क्या उसके जज्बात होंगे? कहाँ हम रोते हैं ड्रामा और फिल्मों को, और कहाँ हम रोते हैं फोटो सेशन वालों को, उसका क्या करें? ये हयाकत करते वीडियोस बनाना, हीरो हीरोइनों की तरह शादियों में जैसे वो घूम फिरे होते हैं, जैसे कोई फिल्म की हीरो हीरोइनों। क्या आज हमारी शादी सेलिब्रेट हो रही है या पिक्चराइज हो रही है? पहले तो बेचारे जिन्होंने एक एज अ प्रोफेशन इसको लिया हुआ था, हीरो हीरोइन बनते थे, फिल्मों में काम करते थे, लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं लेकिन फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करते थे अपनी बहू बेटियों का। आज हर बंदा फिल्म बना रहा है, कैमरे हाथों में है, हर देसी ना देसी पढ़ा लिखा अनपढ़, क्या अल्लाह जाने क्या नियतें बन गई। एक और भी तीसरी चीज भी ले लीजिए, ये जो आज व्लॉग बनने शुरू हो गए, मैं उठा मैं इधर गया, फिर मेरी माँ ने ये किया, फिर मेरी बहन ने ये किया, अपनी पूरी फैमिली लोगों ने सोशल मीडिया पे डाल दी, क्यों? ये पैसे, फ्लेक्स, इतनों ने सुना। एक वो वक्त था, आप सब मेरी बात की गवाही दे सकते हैं, अगर आप पाकिस्तान इंडिया में कहीं रहे हैं, घर में कोई गैर मर्द आए और बहन चली जाए दरवाजे में या ड्राइंग रूम में झांक जाए, माँ आंखों में गैरत उतर आती थी बाप बेटे भाई की। फोन आज भी कई ऐसे घराने, हमारी अपनी फैमिली में फोन लड़कियों को उठाने की इजाजत ही नहीं। अब तो फोन हाथों में आ गए, पहले वो काले रंग का एक रिसीवर होता था नाना अबू के टाइम का, लड़की नहीं उठाती थी दरवाजा, लड़की नहीं खोलने जा सकती थी। शीशे के बाहर फ्रंट डोर की खिड़कियां ही नहीं थी, कहाँ गई हया हमारी? आज हम अपने आप को देखें। याद रखिए अल्लाह के नबी की बात बिल्कुल सच है, फैजलम तस्तही फस नमाशी था, जब तेरे अंदर हया ही ना रहे तो जो मर्जी कर। ये पहले सहीफों में से एक बात अल्लाह के नबी ने बयान की थी। तो हया को देखिए, और औरत औरत और औरत औरत हया वाली हो जाए, मर्द की जुरत नहीं है उसकी तरफ। एक पर्देदार खातून किसी महफिल में आ जाए, सारे मर्दों का हाथ पांव पड़ जाते हैं, ऐसे डरते हैं जैसे बिजली का तार है। और औरत ने तो अपने आप को ऐसे एक्सपोज किया कि वो कोई गुड़ी है, कोई शोपीस है, खरीदनी है नाउसुबिल्ला। पहले घर के ड्राइंग रूम के नहीं, बेडरूम में दुल्हा दुल्हन की तस्वीर लगाते थे जी, ये बहू की, ये बेटे की। थोड़े और जरा लिबरल हुए तो ड्राइंग रूम में चली गई, चार और भी लोग देख लेंगे जो ड्राइंग रूम तक आते हैं। उससे भी लिबरल हुए तो आपने अपने लाउंजेस को टीवी लाउंज कह के उसमें लगा दी। चलो कितने को लोग आते होंगे एक महीने में आपके घर में, कोई अपने ही आते होंगे, कोई एक आधा होगा दोस्त बेटे का या फलां का। आज कहाँ लगती है फोटो, आपके स्टेटस, आपका प्रोफाइल पूरी दुनिया देख, जिसने देखना देखे, आपके कांटेक्ट जिसके पास है, नहीं भी है। आज तो एक एक ग्रुप में चार चार पांच पांच हजार बंदी डाल देते हैं, जो मर्जी एक दूसरे की फोटो देखे। नहीं, फरिश्तों वाली हया अपनानी है इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट पे चलते हैं, मैं चाहती हूँ एटलीस्ट आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाए। बातें तो आप सॉरी खुद भी जानते ही हैं। अगली खूबी फरिश्तों की क्या है कि फरिश्ते नज्म व जब्त के पाबंद होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, हर काम में डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, और इसमें किसी किस्म की कमी बेशी और सुस्ती और काहली का मुजाहरा नहीं करते। जिन फरिश्तों की जहां और जिस वक्त ड्यूटी होती है ना, वो वहां उस वक्त पहुंच जाते हैं। अपने किसी काम में हल्ला गुल्ला नहीं करते, शोर व गुल नहीं होता। आप कहेंगे आप ये बात कैसे कह सकती हैं, तो दलाइल नोट कीजिए। पहली रिवायत हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह अन्हो से है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी एक दफा हमारे पास तशरीफ लाया, फरमाया, अभी आपके खूबसूरत लफ्ज देखिए, आपने क्या फरमाया कि तुम इस तरह सफबंदी क्यों नहीं करते जिस तरह फरिश्ते अपने रब के यहाँ करते हैं। हमने कहा अल्लाह के रसूल, फरिश्ते किस तरह अपने रब के सामने सफ़े बनाते हैं? आपने फरमाया वो पहले अगली सफ़ों को पूरा करते हैं, तकमील करते हैं, और सफ में खूब मिल मिल कर खड़े होते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 968। तो क्या पता चला फरिश्तों की लाइनें, और मुझे तो नहीं पता सऊदी अरब में लाइनें बनती हैं कि नहीं, मैं तो एयरपोर्ट्स पे देख रही होती हूँ। बिलीव मी, एक ही एयरलाइन, एक ही इंसान, जब वो CDG यानी आप कह लें कि पेरिस के एयरपोर्ट पे जाता है और जहाज में जा रहा होता है, उस वक्त वो क्या बिहेव कर रहा होता है, वही बंदा है। और फिर वो अगर कोई मुस्लिम एयरलाइन है तो जो जहाज के अंदर हो रहा होता है पहले ही पता लग जाता है आगे अपनों में। और जब वो अपने मुल्कों में आते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई पीछे हिला के चला जाए, कोई सफ़े नहीं, कोई लाइनें नहीं, कोई रोज नहीं। आप यकीन करें, मैं कल भी कह रही थी कि अल्लाह ने ये जो गैर मुस्लिमों की पाबंदी लगाई है ना कि इन मुल्कों में नहीं आ सकते, यानी हरम में और उसके दूध में, ये बहुत बड़ी खैर है, हमारी इज्जत रह गई। और दूसरी बात है कि अगर होते तो फिर उनको इतनी जगह आती तो हमारे लोग कहाँ आते, पहले ही हरम माशाल्लाह भरा रहता है। सफ़े बनाइए, बी ऑर्गेनाइज्ड, अपनी ज़ात से शुरू कीजिए, और ख़ास तौर पे नमाजें जब हो रही होती हैं तो उसमें सफ़ों को पूरा करें। आप यहाँ तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ही होगा, लेकिन आम तौर पे औरतें अगर किसी मस्जिद में आती हैं, उनको पता ही नहीं होता सफ़ कैसे बनानी है। हरम में बेचारी खवातीन को नहीं पता होता सफ़ बनानी, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ और पढ़ रही हैं। तो बहरहाल फरिश्ते सफ़े बनाते हैं। दूसरा रेफरेंस भी नोट कीजिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सही मुस्लिम 94 नंबर की हदीस है। आपने फरमाया क़यामत के रोज़ मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊँगा, इसके खोल देने का मुतालबा करूँगा, या इस पर दस्तक दूंगा यानी टिक 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 नॉक करूँगा, तो निगरान कहेगा आप कौन हैं? मैं कहूँगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, तो वो निगरान फरिश्ता कहेगा मुझे यही हुक्म दिया गया है कि मैं आपके लिए ही जन्नत का दरवाज़ा खोलूँ और आपसे पहले किसी के लिए ना खोलूँ। हमारे क्या कहते हो यार, मुझे दे दो ना, मैंने जाना है, मेरी बात कर दो। यानी हमारे कल्चर में असल में मुरव्वत है शायद, या ये कि चलो ना, जब एक के लिए करते हैं तो आप सबके लिए करेंगे, जो रूल दूसरों के लिए आपने मनवाना है वो पहले खुद से मनवाएं। मैं नहीं चाहती कि दूसरे ये काम करें, ये मुनासिब नहीं है, तो मैं क्यों करूं? मैं गलत रस्म डालूंगी, अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है तो वो भी गलत काम करेगा। चलिए तीसरी इसकी दलील लीजिए कुरान में से, क्यामत का दिन है, फरिश्ते कितार दर कितार बड़े मुनज्जम अंदाज में होंगे और सफ़ों की हालत में अल्लाह सुब्हान ताला के सामने खड़े होंगे। तसव्वुर में लाइए, और हरम की नमाज कितना प्यारा लगता है जब सारे कंधे से कंधे मिला लेते हैं, फरिश्ते भी अल्लाह के सामने ऐसे ही खड़े होंगे। सूरत फजर आयत नंबर 21 से 23, 21 से 23, कल्ला इजा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बु कबल मलक सफ्फन सफ्फा वजी यौम इजिम बि जहन्नम। सोचिए, यकीनन जिस वक्त जमीन कूट कूट कर बराबर कर दी जाएगी और तेरा रब खुद आ जाएगा और फरिश्ते सफ़े बांध कर आ जाएंगे और उस दिन जहन्नम भी लाई जाएगी, तो फरिश्तों के लिए क्या बात आई, सफ दर सफ ऑर्गेनाइज होंगे। अगला रेफरेंस भी ले लें, सूरत नबा आयत 38 से 39, यौम यकूमुर रूहुल मलाइकतु सफ्फल ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु वकाल सवाबा ज़ालिकल यौमुल हक। जिस दिन रूह, और रूह से यहाँ कौन मुराद है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे और कोई कलाम नहीं कर सकेगा मगर जिसे रहमान इजाजत दे दे, और वो ठीक बात जुबान से निकालेगा ये दिन हक का यानी याना है, तो क्या पता चला कि फरिश्ते ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। आप अपनी जाती जिंदगी में, और मैं भी एक औरत हूँ आप भी हैं, तो मैं तो आपसे ही बात करूंगी, आपका घर कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है? खुद से पूछिए, किचन नमक की जगह चीनी कब डलती है, जब किचन ऑर्गेनाइज नहीं होता। जो बंदा ऑर्गेनाइज होता है ना, वो थोड़े से वक्त में भी बहुत काम कर लेता है, थोड़े से पैसों में खवातीन बहुत अच्छा घर चला लेती हैं, लेकिन जो नहीं चला पाते उनको पता नहीं होता। तो हमें भी अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइजेशन लाना है। गंदे घर में गुस्सा आएगा, मियाँ पे जादू नहीं किया हुआ किसी ने, असल में आपने खुद ही किया हुआ है अपनी गंदगी के साथ। एक औरत है वो कहती है क्या करो, बाहर मेरे मियाँ का मूड बड़ा अच्छा होता है, घर आते ही कुछ हो जाता है, मेरा ख्याल है मेरी सास ने कुछ जादू किया हुआ। वो जो मेरी नंद है ना, वो भाई को कुछ खिलाती है तो वो घर आता है ना, मेरा मियाँ तो मुझ पर गुस्सा करता है, भाई आपका जादू ही बहुत है। टाप टाप के चीजों में से गुजरना पड़े, गिरते पड़ते गरीब, उनको अपनी मिसवाक नहीं मिल रही, जूती नहीं मिल रही है, एक सौक नीली पीली, तो फिर घर तो घर नहीं होता। आप करके देखिए, आप कंघी कर लें तो आपको जरा अच्छा फील होता है, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन लें, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। तो हमेशा अपने घरों को, अपनी जात को, अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज रखिए। अगली खूबी फरिश्तों की क्या है, फरिश्ते बहस और मुबासा भी करते हैं, तो हमें इजाजत मिल गई, हमने नहीं करना। लेकिन फरिश्तों का बहस मुबासा कौन सा होता है, जो लफ्ज कुरान में आया वो क्या है, यख्तसिमून, सूरत स्वात नोट कर लें, अगर रेफरेंस 69-70 आयत है, मा कान लिया मिन इल्मिन बिल मलाई इल्ला अला इज यख्तसिमून इन यूहा इलैय इल्ला अन्नमा अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। अल्लाह के नबी सल्लम फरमाते हैं कि मुझे इन बुलंद कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म नहीं, जबकि वो तकरार और बहस मुबाहसा कर रहे थे, मेरी तरफ फक्त इसीलिए वही की जाती है कि मैं तो साफ आगाह करने वाला हूँ। अब ये अल्लाह के नबी सल्लम को जो सूरह सात की आयतों में बताया गया, इसमें लफ्ज़ क्या है, यख्तसिमून, ये वो झगड़ा नहीं जो हसद और कीने की वजह से होता है, ये अखलाक से गुजरी हुई बातें नहीं, ये कौन सा झगड़ा है, कौन सा मुबाहसा है, तो इस पे उलमा की मुख्तलिफ राय हैं, जिसमें एक यह है कि वही तख्लीक आदम का किस्सा, के अल्लाह आप क्यों बना रहे हैं जबकि हम जी मौजूद हैं, नाहनु नुसब्बिहु बिहम्दी का बास कहते हैं उनका तस्करा है, और जो हुई थी, और इसमें हाफिज इब्ने कसीर और इमाम कुर्तुबी इमाम शौकानी वो यही बात कहते हैं, बस कहते हैं कि नहीं, बस अहादीस में फरिश्तों में एक मुबासे का तस्करा था, और वो रिवायत हजरत माज रजी अल्लाह तआला अन्हो से है, बड़ी मजे की रिवायत है, कहते हैं कि एक दिन सुबह की नमाज में अल्लाह के नबी ने बहुत देर लगा दी, यहाँ तक कि सूरज तुलू होने का वक्त आ पहुंचा। फिर जल्दी जल्दी आप तशरीफ लाए और नमाज के लिए इकामत कही गई। फिर अपने मुख्तसर सी नमाज पढ़ी, क्योंकि लेट हो रही थी, छोटी सी नमाज पढ़ गई और सलाम फेरने के बाद ऊंची आवाज में लोगों से फरमाया कि अपनी अपनी सफों में बैठे रहो, यानी डोंट मूव, कोई अहम बात होने वाली है। फिर हमारी तरफ तवज्जो की और फरमाया कि मुझे नमाज के लिए आने में देर क्यों हुई। अब आपकी भी जरा तजस्सुस हो रहा होगा कि क्या आप बताने वाले हैं। आपको पता है कि मैं क्यों देर से आया? मैं इसके बारे में तुम्हें बताता हूँ। अब आगे से ना इमेजिन करिए, क्योंकि फरिश्तों का मौजू है ना, ये थोड़ा सा फील करने वाला मौजू है। कहते हैं कि हुआ ये कि मैं नमाज तहज्जुद के लिए रात को बेदार हुआ, फिर वुजू करके हस्बे तौफीक नमाज पढ़ी और नमाज ही में मुझे ऊंग आने लगी, जैसे हो जाता है एक हल्की सी यॉनिंग सी होने लगती है। फिर मैं बोझल हो गया। फिर मैं अचानक देखता हूँ कि मैं अपने रब के पास हूँ और मेरा रब बहुत ही उम्दा सूरत में दिखाई दे रहा है। मुझे रब ताला मुखातिब फरमाते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ, या रब्बी, जी अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, लब्बैक। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मलय आला, यानी ऊपर आलमे बाला के जो फरिश्ते हैं, ये किस मामले में बहस और तकरार कर रहे हैं, तुम्हें इल्म? मैंने कहा नहीं। तीन मरतबा यही सवाल जवाब हुआ। फिर मैंने देखा अल्लाह ताला ने मेरे दोनों कंधों यानी शोल्डर्स के दरमियान अपना हाथ रखा, यहाँ तक कि अल्लाह की उंगलियों की ठंडक मुझे अपने सीने में महसूस हुई। और फिर उसके बाद मुझ पर हर चीज रोशन हो गई और मैंने पहचान लिया कि आलमे बाला के फरिश्ते इस वक्त किस मामले में बहस मुबाहसा कर रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने मुझे मुखातब किया और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा, या रब, मैं हाजिर हूँ। पूछा, तुम्हें मालूम है कि आलमे बाला के फरिश्ते किस मामले में बहस मुबाहसा कर रहे हैं या तकरार कर रहे हैं? अब मैंने कहा कि जी, गुनाहों के कफारे के बारे में। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर तुम बताओ कि वो क्या है, यानी क्या चीज़ है जो बंदे के गुनाहों का कफारा बनती है। मैंने कहा, बाजमात के लिए कदम उठा कर जाना, यानी जो मर्द जमात की नमाज के लिए जा रहा होता है, और ऑफ कोर्स औरत भी जाएगी तो अजर तो उसको भी मिलेगा, ये बंदे के गुनाहों के कफारे होते हैं। दूसरी चीज, नमाजों के बाद मस्जिदों में बैठे रहना, यानी इंतजार उस सलाती बाद सलाह, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के अंदर, यानी जैसे सर्दियों में आपको तो जल्दी जल्दी नमाजें हो रही है ना, चलो अब एक पढ़ी है दोबारा भी पढ़ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसालें घरों में मौजूद हैं कि मर्द जो है उनको अपना फालतू वक्त इधर उधर लगाना नहीं, बल्कि वो मस्जिद में लगाएंगे। तीसरी चीज, जब बंदे का दिल ना चाहे, इकराह या मकरूह कह लीजिए, होता है ना इकराह, यानी जब ठंड बहुत है फिर भी अच्छा वुजू करना, मेकअप किया हुआ फिर भी अच्छा वुजू करना, शादी हाल में यार वजू करना पड़ेगा, तो ये चीजें दर्जों को बुलंद करती हैं। फिर अल्लाह ताला ने पूछा, अच्छा ये तो दर्जे क्या हैं? और आपको तो ये हदीस कहाँ होती है? तफासीर में, सूरह आल इमरान की आखिरी आयत में, या अल्लज़ीना आमनु इस्बिरू वसाबिरू वरआबितू, ये रिबात है, रिबातुल खैल कुरान में आता है ना, सूरह तौबा में भी, बांध के रखना, रिबात। पूछा, दर्जे किस चीज में बड़े हैं? तो मैंने कहा, खाना खिलाना, खिलाइए लोगों को, पर अपने नाम पे नहीं, शादियों पे नहीं, आप अल्लाह के लिए खिलाइए, अपने घर वालों को खिलाएं, अमीरों को खिलाएं, खिलाना अल्लाह के लिए। एक और बुरी चीज जो आज हमारी उम्मत में चली गई, वो क्या है, वलीमा गोल हो गया, रुख्सती के खाने को ही दोनों फैमिलीज आधा आधा बांट लेते हैं। असल में तो जुल्म किसके साथ हुआ? लड़की वाले के साथ हुआ, वलीमा किधर गया? और जो मुंह पे नहीं लाने को दिल कर रहा, अभी चंद दिन पहले हमारी ये सामने बात हो रही, कहने के अब नई टर्म निकाल ली हमारे देसी लोगों ने, इधर भी पहुंच गई ये बात, अल्लाह अकबर कबीरा। अब आप सोचिए, वलीमा जो सुन्नत है वो तो गायब हो गया ना, शादी में तो समय वलीमा ही था, निकाह और वलीमा, हम वलीमे को कर गए जो आपने कहा, मेरा दिल ही नहीं करा बोलने को। तो उर्दू में नहीं, आप वो जो मजहूल लफ्ज होते हैं, जैसे जैसे रोटी शोटी, तो वलीमा शलीमा, वलीमा नहीं रहा तो पीछे शलीमा ही रह गया, वो शादी के लफ्ज के साथ शलीमा। तो शलीमा क्या है? लड़की वालों पे जुल्म करना, वलीमे की रूह ही नहीं है ये बनती। बेहतर है बेटी को भेज दें, एक दिन रुखसती हो जाए, अगले दिन मिलके जो मर्जी करना है कर लें। कहते नहीं, फिर वो मूवी कैसे बनाएंगे, फिर वो विदा और शादी और वो रिसेप्शन और बारात, यानी हमने भी तो दूसरों के जूतों में पांव डाल के पूरे करने हैं ना। तो अल्लाह में हिदायत है, सच्ची बात है, पेट से कपड़ा उठाएं तो अपना ही जिस्म खुलता है। आज हम मुसलमानों में कितनी कमी आ चुकी है, अल्लाह हमें माफ करे, तो अपने ऊपर लीजिए, खाने खिलाने हैं अपने नाम पे नहीं खिलाएं, लाखों का खाना, और जरा बड़ी शादी हो और अपने मुल्कों में हो तो करोड़ों का खाना। मांगो क्या मांगते, किसी ने दावा किया कि मेरे बेटे के वलीमे के डिनर में जो उन्होंने दूर किसी फार्म में किया खुली जगह में, जो मांगो मिलेगा? तो लोगों ने दोस्त यार और बेली होते हैं ना तो मजाक किया, बटेरे हैं कहते जाओ वो फलां जगह उसका स्टॉल लगा हुआ, चिड़िया तो होते हैं वो इधर से मिलते हैं, ये हाल है, खाएंगे सारा। और एक शादी से होके आप आ जाए तो दिल रोता है जो खाना जाया होता है। किसी ने कहा 18 लाख का बिल आया, मैंने कहा 18 में से मेरा गुमान जो 8 लाख तो बिन में गया होगा, अल्लाह में हिदायत दे दे। बहरहाल ये रिवायत जो, ये तिरमिजी की रिवायत थी 3235 नंबर की, तो फरिश्ते जो कर रहे हैं वो हमें गौर व फिक्र करना है। अगली चीज ले लीजिए, आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा था। अच्छा, ये दर्जों की बात में खाना खिलाना, नरमी से बात करना और रात को उस वक्त नमाज पढ़ना जब लोग सोए हों, अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, अल्लाह हमारी रातों को रोशन कर दे, तहज्जुद का में आदि कर दे। ये जो अल्लाह सुब्हान तआला को देखने वाली बात थी ना, इसमें एक वन लाइनर जवाब दे दो, ये ख्वाब था, क्योंकि ये मुत्तफिक अलैह हमारे सलफ सालेहीन का अकीदा है कि खुली आंखों से अल्लाह के नबी ने भी अल्लाह को नहीं देखा। हाँ, क़यामत के बाद जन्नत में अल्लाह जिसको चाहे दिखाए, वुजूहुन यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि हम भी अल्लाह ताला के सामने जाने वाले काम करें। नेक्स्ट बात लीजिए, फरिश्ते अल्लाह के खौफ से लरसते हैं, कांपते हैं, डरते हैं। दलील ले लीजिए सूरत नाहल 49:50, वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मिन दाबतिन वल मलाइकतु व हुम ला यस्तकबिरून यखाफून रब्बहुम मिन फौकिहिम व यफअलून मा युमरून। यकीनन आसमान व जमीन के कुल फरिश्ते, यानी कुल जानदार और तमाम फरिश्ते उस अल्लाह के सामने सजदा करते हैं और जरा भी तकबर नहीं करते, और वो फरिश्ते अपने इस रब से जो इनके ऊपर है कप कपाते रहते हैं, और जो हुक्म इन्हें मिल जाए इसकी तामील करते हैं। अल्लाह हमें अपना खौफ दे और जो बात अल्लाह ने हमें कह दिया हम उसको मानने वाले बन जाए। एक रेफरेंस और ले लीजिए, सूरत अम्बिया 28, वहुम मिन खशयतिही मुशफिकून। वो फरिश्ते तो खुद अल्लाह की हैबत से लर्जाओ तरसा रहते हैं, लरसते हैं। कितनी खूबियां पढ़ी हैं आपने फरिश्तों की, आपके अंदर मेरे अंदर है जी 7, और अगर इसको एलेबोरेट करें तो इसमें और भी बहुत सी डलती हैं। तो इतना इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपका मेरा अमल क्या है, आपने आपको टैली कीजिए, चेक कीजिए, 4 दिन की जिंदगी है, आप देखिए कि पता नहीं कल क्या होने वाला। तो जो जितना अल्लाह का हुक्म सुनकर अल्लाह ताला की बात माने का फायदा होगा। कोई सवाल कोई बात है, नहीं तो अगला एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक तो आपको दे ही देती हूँ कि फरिश्तों को क्यों पैदा किया है, लेकिन कोई सवाल है आपके जहनों में, कोई बात जो आप पूछना चाहें या शेयर करना चाहें, फायदा हुआ आपको, दिल चाह रहा है ना कि हम भी अपने अंदर ये खूबियां लाएं, अल्लाह ताला आसान करे। चलिए, फरिश्तों का मकसद पैदाइश क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ ऑफ द एंजल्स, 3 लफ्ज लिख लें, इबादत, इतात और फरमा बरदारी। जिस तरह इंसानों की पैदाइश का मकसद क्या है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, सेम वही मकसद है। अल्लाह ने कायनात की हर चीज को अपनी इबादत और इताअत के लिए, फरमा बरदारी के लिए पैदा किया है। फर्क क्या है, जिन्नों और इंसानों को विल पावर दी गई, चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, लेकिन फरिश्तों को और बाकी मखलूकात को चॉइस नहीं दी गई। चूंकि इंसानों और जिन्नों को चॉइस दी गई इसीलिए उनको अजर भी है, अगर वो बचेंगे तो जन्नत मिलेगी और अगर इसके बावजूद गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से जिनको पकड़ दिया। अब देखिए ना इस माइक के अंदर एक प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि मेरी आवाज ऊंची करके इन स्पीकर्स में लेके जा रहा है और वो स्पीकर्स आपको आवाज दे रहे हैं। अब ये बेचारा इसमें से दूध तो नहीं निकल सकता ना, इसने बस यही करना है। तो अब इस माइक का क्या इसमें कमाल है, करने वाले ने प्रोग्रामिंग कर दी, मजबूर है। एसी है उसने ठंडा ही करना है, हीटर ने गर्म करना है। तो फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने ये प्रोग्रामिंग कर दी है, इसीलिए उनको अजर नहीं, उनको गुनाह नहीं। अल्लाह ने एक ऐसी मखलूक बनाकर इंसानों को बता दिया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को क्या किया, अपनी इबादत और इताअत फरमाबरदारी के लिए पैदा किया। हर वक्त फरिश्तों की जुबान पे क्या होता है, तस्बीह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, तहमीद, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तकदीस, सुबूहुन कुद्दूसुन या सुबहान अल्लाह कह ले, और किब्रियाई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, और इसी तरह से अल्लाह तला की पाकी बयान करना। अब जुबानों पे ये है, हुक्म दिया जा रहा है फौरन मान रहे, गुना नाफरमानी हुक्म अदूली सुस्ती काहली लापरवाही उनमें नहीं है। तो फिर पीछे क्या हुआ कि फरिश्तों को अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है ना, कोई फरिश्ता उसमें गफलत नहीं करता, जो काम जिसको दिया है वो करेंगे और बिल्कुल पीछे नहीं होंगे। सवाल पैदा होता है कि फरिश्तों की जिम्मेदारियां और उनके इख्तियारात क्या हैं। तो बड़ी मजे की ये चीज है और इसमें तो बच्चों को भी बड़ा मजा आता है। तो याद रखिए कि दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं ना, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह करवा रहे हैं। समझने के लिए बस समझिए, जैसे फोर्स होती है ना, मैन पावर, फोर्स, आर्मी, हर मुल्क की होती है, हुकूमतों की होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फरिश्ते अल्लाह की आर्मी है। बारिश बरसाना है, बाज़ फरिश्तों को अल्लाह ने रूहें निकालने के लिए, बाज़ को रूह डालने के लिए, बाज़ को आसमानों और ज़मीन पर होने वाले जो उमूर है उनको तय करने के लिए, और बाज़ को कायनात में होने वाली तब्दीलियों में अमल दखल पर मामूर किया है। फरिश्ते ये काम भी अल्लाह के हुक्म से करते हैं। मसलन मीकाईल का काम बारिश बरसाना है, बारिश बरसाने वाले फरिश्ते हैं ना, तो वो रूहें नहीं निकाल सकते। मलकुल मौत का काम जान निकालना है, तो रू नहीं डाल सकते, ठीक है। और मजे की बात देखिए कि ये इतने बड़े बड़े काम फरिश्तों से कराए भी जा रहे हैं, इसके बावजूद फरिश्तों ने कभी अना रब्बुकुम अलअ नहीं कहा, कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह को बराबर समझो, ये नहीं कहा कि हमसे मदद मांगो। ना उनकी परस्तिश की जा सकती है और ना उनसे मदद मांगी जा सकती है। मक्का वालों का क्या था शिर्क, कहते थे फरिश्ते अल्लाह की बेटी हैं। और हाँ, अल्लाह की मर्जी है कि वो हमारी मदद के लिए या तो खुद ही कोई सबब बना दे या फरिश्तों को नाजिल कर दे, जैसे अम्बिया कराम के साथ हुआ। नबी सल्लम के दौर में गजवे बदर में फरिश्ते उतरे, खंदक में उतरे, क्यों उतरे, अल्लाह चाहे तो फरिश्तों को भेजे, फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आ सकते और ना आते हैं। अब सवाल एक और है कि क्या फरिश्तों के अलावा कोई और भी हस्ती कायनात में मामूर है कि जिनको अल्लाह ताला ने कोई काम दिया हो, मसलन नबी वली और फला फला, हमारी इनके आगे और इनके अल्लाह के आगे, क्या हम फरिश्तों से नहीं मांग सकते मदद, तो इंसानों में से किसी से मांग सकते हैं? कतन नहीं मांग सकते। इय्याका नअबुदु वइय्याका नस्तईन। इसके बावजूद मुसलमान घरों में पैदा होने वाले लोग गैर मुस्लिम कल्चर से मुतासिर होकर शिर्क में मुबतला हो गए। आपने कभी सुना, बड़े ये कंपैरेटिव रिलीजन का बड़े तकलीफ दे टॉपिक है। अब ये मैं नहीं आपको कह रही, मैं आपको गलत चीज बता रही हूँ जो लोग कहते हैं। मसलन हिंदू मजहब को सामने रखे तो वो तो हर चीज जिससे वो डरते हैं, जिससे उम्मीद रखते हैं, उसको पूछते हैं, पीपल के पत्ते से लेके हनुमान, सांप, नागन देवी, फुलां देवी, शर्मगाह तक की वो पूजा करते हैं। वो कहते हैं ये दुनिया में आने का जरिया बनी, नऊज़ बिल्लाह, यानी जिससे डरे या जिससे उम्मीद रखी उनके साथ इसी तरह का मामला करते हैं, हमें इसकी इजाजत नहीं। लोगों ने क्या मिथ बनाए, वो कहते हैं कि दुनिया में चार वली ऐसे हैं जिन्हें औताद कहते हैं, उन्होंने दुनिया के चारों कोनों को थाम रखा, हालांकि दुनिया तो गोल है लेकिन उनका एक ही कौल है। फिर इसी तरह वो कहते हैं कि सात और औलिया कराम है नऊज़ुबिल्लाह, जिन्होंने सातों आसमानों में से एक एक आसमान का निजाम संभाला हुआ है, इनको वो कहते हैं अब्दाल। 40 वली ऐसे हैं जिन्होंने मखलूक का बोझ उठा रखा है, उनको वो कहते हैं नजीबा, नजीबा से ना। और 300 वली उनके मुताबिक ऐसे हैं जो लोगों के साथ शहरों में रहते रहते हैं, उनके बाद उन सब के ऊपर एक बड़ा वली होता है जिसको कुतबे अकबर कहते हैं या गौसे आजम कहते हैं, और ये हमेशा मक्का मुकरमा में रहता है, जबकि दुनिया में जो मुसीबत आफत आती है वो इन सब औलिया से गौसे आजम तक पहुंचती है नऊज़ुबिल्लाह, और वो इसे दूर करते हैं। तो कहिए नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बातिल परस्ती है। अकायद और नजरियात अगर किसी के इस तरह के गुमराहाना है तो याद रखिए कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत नहीं है। फरिश्तों को भी नहीं पुकार सकते तो किसी इंसान को कैसे पुकार सकते हैं? काम कैसे होता है? एक सवाल जहन में आता है, बहुत बड़ा, आपके शायद आया कि नहीं आया, लेकिन इस मौजू को रैप अप करते हुए मेरे जहन में आ रहा है। अभी आपको बता रही फरिश्तों को काम दिए हैं, और आगे इंशाल्लाह अगर आपका दिल होगा तो आपको भी बताऊंगी कि क्या क्या काम दिए हैं। तो सवाल ये कि अल्लाह ताला तो कुन फयकुन के मालिक, फइन्ना अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यकूल लहू कुन फयकुन, तो फिर अल्लाह को फरिश्तों से काम लेने की क्या जरूरत थी? कुन कहता दुनिया बन जाती, कुन कहता बारिश होती, कुन कुन कह देता। फिर फरिश्तों को क्यों जिम्मेदारियां दी गईं? सूरज चांद और पानी और बादल और दरियाओं को और पहाड़ों को क्यों कह दिया? तो इसका जवाब क्या है कि अल्लाह सुबहान तआला हमें दिखा रहा है। इससे अल्लाह तआला की अजमत का इजहार होता है कि अल्लाह का इतना गलबा और इतनी अथॉरिटी है, मैजेस्टी है, कि अल्लाह ताला अपने काम, जैसे आप कहते हैं एक बादशाह के अंडर इतने वजीर, इतने दरबारी हैं, वो फला आर्मी इतनी है ना, तो वो एक बड़ापन दिखता है ना। तो अल्लाह सुबहान ताला ने इन सारी चीज़ों को करके हमें दिखाया कि दुनिया में काम कैसे करो, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, कामों को डेलीगेट करो। अब मेरे आपके लिए इसमें अमल क्या है? कुछ को तो बुरा लगेगा, लेकिन सासों की बात कर दो, अपने हाथ से डोई नहीं छोड़ती, खाना मैंने ही बनाना है, बहू को तो आता ही नहीं है, बेटियां तो फैला देती, यानी कुछ बुजुर्ग खवातीन अपने घर में किसी और को आने नहीं देती, पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं, भुना नहीं, नमक तेज, मिर्च तेज, फिर बाद में कहती हैं बहू काम नहीं करती, बेटियां वो तो पढ़ती रहती हैं, बेटी 11 बजे भी उठ जाए सो गए तो सो के, और बहू बेचारी 9 बजे भी उठ जाए तो बुरी बनती है। कामों को डेलीगेट कीजिए, जिंदगी का असूल है अपने ना होने को याद रखिए। किसी जगह आपका इंस्टीट्यूट है, आप किसी जगह कोई अथॉरिटी रखते हैं, अपनी जिंदगी में लोगों को तैयार करें, आपके साथ एक कुर्सी बढ़ी हो और उस कुर्सी पे अपने सामने किसी को बिठाइए, ट्रेनिंग करें, उसकी इसलाह करें, मतलब उसके ऊपर एक तनकीद करें, अच्छे रंग की तनकीद है, आप देखेंगे आपके सामने गलतियां करेंगे, आप सहार लेंगे, उनको ठीक हो जाएंगे, ट्रेनिंग के बाद ठीक होता है। और अगर मैं को मेरे सिवा कौन इस कुर्सी पे, तुम बैठोगे इस कुर्सी पे, तो फलां नहीं आज तक बैठा, तुम कहाँ से बैठोगे, और ये और वो, तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन हम क्विकली उंगलियों पे लिख लेते हैं कि अल्लाह सुबहान ताला ने फरिश्तों को जो काम दिए हैं, जिस तरह से उनका मकसद पैदाइश था, अगर उसको चार छः बड़े बड़े लफ्जों में करूँ, फरिश्ते क्या करते हैं? नंबर एक तस्बीह और तहमीद, यानी फरिश्ते बगैर किसी तकलीफ और मशक्क़त के अल्लाह की तस्बीह और उसकी हम्द में मसरूफ़ है। हम थोड़ी देर बाद थक जाते हैं ना, सुबहानअल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, थक जाते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए पहली तो बात है, लेकिन बशर्ते हैं थक सकते हैं, जब थकते हैं तो थोड़ी देर छोड़ दें, रिलैक्स हो जाए। अब तवाफ़ करते हुए क्या पढ़ रहे हैं आप, ये तो अब आपका अपना अपना मामला है, लेकिन पूरा वक्त कुछ नहीं भी पढ़े, गौर कीजिए काबा को देखते रहिए। किसी ने कहा अच्छा उमरा करने जाएं तो काबा को नहीं देखते, मैंने कहा हैं ये किसने आपको कहा, कहा किसी ने कहा, कोई हवाला नहीं, कोई रिसोर्स नहीं है। तो फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह करते हैं, इसके दो तीन रेफरेंस नोट करना चाहें तो कर लें, अम्बिया 20, युसब्बिहून अल-लैल वन-नहारा ला यफ्तुरून, वो फरिश्ते दिन रात उसकी तस्बीह बयान करते हैं और कभी दम ही नहीं लेते, क्योंकि वो थकते नहीं, तो उनको लेने की में कोई मुश्किल नहीं। और अगली आयत तो मेरी फेवरेट आयत है, सूरत मोमिन आयत नंबर 7, الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. اس پہ لیکچر بھی ہے عرشیوں کی دعائیں فرشیوں کے لیے. ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمانداروں کے لیے بخشش مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی اتباع کی انہیں بخش دے اور جہنم کے عذاب سے بچا لے. کیا پتہ چلا، فرشتوں کی دعائیں لیجیے. بہت پیارا اس کے اوپر ایک لیکچر ہے، ضرور سنیے. ایسے ہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا، ہم انسانوں کو کہتے رہتے ہمارے لیے دعا کرنا، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، دعا کرنا دعا کرنا، میرا نام لے کے کر کسی، آپ جب دعا کریں میرے لیے کریں. میں نے کہا بھائی، میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لے رہی، میں بھول جاؤں پھر؟ نہیں، آپ نے یہ ضرور کرنی ہے، ہمیشہ کرنی ہے. بھائی میں نہیں کر رہی، میں آپ کو بھی دعا دے رہی ہوں. فرشتے کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں. چلیے، سورۃ صافات آیت 164 سے 166 تیسرا ریفرنس ہے بیسیکلی. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. بلکہ میں آپ کو اپنے دل کی بات پر اس ٹاپک کو کور کرتے ہوئے میں نے جو فیل کیا ہے، قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ فرشتوں سے متعلق ہے. آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ ابھی تو آپ ایک لیکچر سن رہے ہیں، اس کے 8-10 لیکچر ہیں ایمان بالملائکہ کے. قرآن کا بہت بڑا حصہ فرشتوں سے متعلق بات کرتا ہے اور ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں. یہ جو آیت ہے صافات، اس کا ترجمہ، فرشتوں کا کال ہے کہ ہم میں سے تو ہر ایک کی جگہ مقرر ہے اور ہم تو عبادت الہی میں صف بستہ کھڑے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو فرشتوں کا پہلا کام کیا ہے؟ تسبیح اور تحمید. اور یہ تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا تھا آدم علیہ السلام کے معاملے میں کہ نحنو، ہم جو کر رہے ہیں تو پھر آدم کو آپ نے کیوں پیدا کیا. دوسرا کام فرشتے کیا کرتے ہیں؟ رکوع اور سجدے کرتے ہیں. حکیم بن حزام سے روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ تشریف فرما تھے، اچانک آپ نے فرمایا، اب یہ جملہ سنیے گا، اتسمعون ما اسمعون، کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ یعنی ایک دم آواز ہے تو آپ کہیں گے آپ کو بھی آواز آ رہی ہے کچھ. صحابہ نے کہا ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی. تو آپ نے فرمایا انی اسمعو اتیت السماع وما تلامو انت ایت وما فیہا مودیو شبرن الا علیہ ملکن ساجدن او قائمن. میں آسمان کے لرزنے کی آواز سن رہا ہوں اور اس کے لرزنے اور کانپنے کا کوئی خوف نہیں. آسمان میں کہیں ایک ہاتھ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ ریز یا حالت قیام میں نہ ہو. سبحان اللہ. اور یہ روایت سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 3084. اللہ نے فرشتوں کو رکوع سجدہ کہا ہے، آپ پر میں کرے نہ کرے. اور یہ جو آوازیں ہیں، آپ کو پتہ ہے ناسا نے کچھ ریکارڈنگز کی ہیں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تھے نا، تو صحابہ نے پوچھا تھا. یہ جو روایت بتا رہی ہوں، یہ اس طرح کی روایت اس موقع کی ہے. اللہ کے نبی جب آپ اوپر گئے تو کیا دیکھا؟ جیسے ہمارے کلچر میں بھی ہوتا ہے نا، آپ عمرہ کر کے ہیں تو لوگ پوچھنے آ جاتے ہیں، اچھا سناؤ، اچھا کھجوریں پانی بھی دے دو، ہیں کر دو نا، کوئی باہر سے آتا ہے تو ملتے ہیں. تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، اللہ کے نبی آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ تو اس موقع پہ بھی آپ نے کہا تھا کہ لرزنے کی بات ہے. تو آج ناسا جو کہ ہیوسٹن میں ہے، اتفاق بھی ہوا ہمیں جانے کا ادھر، تو وہ کچھ ریکارڈنگس لے کر آئے ہیں، کبھی موقع ہو تو آپ کو سنواؤں گی. ایک دم گھڑگھڑاہٹ کی بات آتی ہے. تو جو چیز ہمارے آج کے اسکالرز ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ وہی آوازیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کی تھیں. اللہ اکبر. ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، ایک بندے کے اندر ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے. فرشتوں کا اگلا کام لے لیجئے، حج اور طواف بھی کرتے ہیں. آپ جدہ میں رہنے والوں کو تو اور بھی اچھا لگے کہ آپ حج کر رہے ہیں، ساتھ فرشتے بھی حج کر رہے ہیں. نہیں، اس مکہ والے حج میں نہیں کرتے، بلکہ आप जमीन पे बैतुल्ला में हज और उमरे करते हैं, तवाफ करते हैं, इसी के ऊपर आसमानों वाले फरिश्ते सातवें आसमान पर बैतुल्ला, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं, उसका हज करते हैं। और बैतुल मामूर का तस्करा कुरान में किधर है? कसम खाई, सूरत तूर में, वल बैतिल मामूर। तो जितने फरिश्ते वहां जमा होते हैं ना, उनको एक बार के बाद दोबारा बारी नहीं आती। आपकी तो हुकूमत है कुछ साल के बाद फिर भी इजाजत दे ही देती होगी ना, फरिश्तों को नहीं मिलती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो सूरह तूर की आयत नंबर 4 है, वल बैतिल मामूर, कसम है बैतिल मामूर। मामूर किसको कहते हैं? अमरा से उमर, आबाद करना, यानी भरे हुए घर की कसम है। तो अल्लाह के नबी सल्लम ने क्या फरमाया? फरूफी अली अल बैतुल मामूर युसल्ली फीही कुल्ल यौमिन सबूना अल्फ मलकिन इज़ा खरजू लम यऊदू इलैही आखिर मा अलैहिम। फिर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया, मैंने जिब्राइल से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये बैतुल मामूर है, इसमें 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं, और एक मरतबा जो फरिश्ते नमाज पढ़कर इससे निकल जाते हैं तो फिर कभी दाखिल नहीं हो पाते। ये बुखारी की रिवायत है 3207 नंबर की, और अल्लाह करे कि अल्लाह के घर भरे ही रहे। कोरोना का वक्त याद आता है, कैसे मैका जैसे उदास हो, खाली घर हो, माँ बाप के बगैर, इस तरह खाना कहवा लगता था। अल्लाह का शुक्र है भरा, मैं तो जब भी देखते हुए सोच रही थी कि भरा ही अच्छा, खाली नहीं अच्छा लगता ना। बेटियों को भी अपने माँ बाप के घर भरे अच्छे लगते हैं, बहन भाइयों के, बच्चों के, बच्चे बच्चे अच्छे लगते हैं ना। तो बैतुल मामूर का तवाफ करने वाले 70,000 फरिश्ते रोज, और फिर उनको दोबारा बारी नहीं आती। इससे पता चलता है कि फरिश्ते बहुत सारे हैं और वो इबादत भी करते हैं, इसीलिए अल्लाह ने उनकी कसम खाई। आखिरी चीज जिस पे मैं चाहूंगी कि अब आप भी थक गए होंगे, क्योंकि हम फरिश्ते तो हैं नहीं जो थके नहीं, और वो क्या है? खौफ और खशियत इलाही। खौफ और खशियत भी इबादत का चूके हिस्सा है और फरिश्ते भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? सूरत अंबिया आयत 28, वहुम मिन खशियतिही मुशफिकून। वो फरिश्ते तो अल्लाह ताला की हैबत से लरसते रहते हैं। तो ये चंद चीज़ें थी जिससे इंशाल्लाह हमें एक फरिश्तों का एक कॉन्सेप्ट मिला। इंशाल्लाह इसी सीरीज में हमारा अगला लेक्चर आएगा, मशहूर फरिश्ते और उनकी जिम्मेदारियां। और आई एम श्योर अगर आपने कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं ली सुनी तो आपको बहुत नई चीज़ें मिलेंगी। आपको YouTube पे जब भी कोई ये मौजू मिले दिखे तो आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और प्लस ये कि आगे दमाम और खुबर के जितने लेक्चर्स हैं उसमें भी फरिश्तों के मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स पे भी बात होगी और मौत के बारे में भी बात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर।